Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ano Raniyan Mahato Mahiyan Atmasya Jantor Nihito Guhayam तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। आत्मतत्व अणु से भी अणु है, महान से भी महान। जीव की हृदय रूप गुफा में विराजमान निष्काम पुरुष के द्वारा इंद्रियों की प्रसन्नता से उस तत्व को देखा जा सकता है। देखने के बाद साधक शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। वह अणु से भी अणु, महान से भी महान, अणु के अंदर भी और बाहर भी। दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज है उससे भी बड़ा, माने वो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र विराजमान है। वो छोटा भी है, बड़ा भी है, छोटे में भी है, बड़े में भी है, वो सर्वरूप है। और दो के बीच में जो स्पेस, खाली जगह आकाश, उसमें भी है। दो विचार उठते हैं और उस दो विचारों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें भी वही है। वो काल की बहुत छोटी इकाई है। एक विचार उठा, गिरा, दूसरा पैदा हुआ, तो दो विचारों के बीच में वो कितनी जगह है और वो दोनों को पैदा होने के बीच में कितना समय है छोटा सा, उसके अंदर भी वही है। सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व रूप में, इसी बात का दिग्दर्शन करने के लिए कहा अणो रणियान महतो महियान। और जब छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में है वो, तो हमें उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा कि बड़ा बनना पड़ेगा? हम क्या बनना चाहते हैं? हम बड़ा बनना चाहते हैं। तो उस परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? हम बनना तो चाहते बड़े, हम छोटे से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन श्रुति कहती है कि छोटे में भी वही है और बड़े में भी वही है, इसलिए उसको पाने के लिए न छोटा बनना है और न बड़ा। हम जहां पर भी हैं वो केवल समझना है। यहां कहीं न जाना है न आना है, यहां केवल जानना है बस। ये वेदांत की साधना केवल जानने की, समझ को पैदा करने की साधना। अब उस तत्व को जानना है, वो होगा कहां? अनोरणियान महतो महियान। अब वो होगा कहीं, तो होगा वो, था भी बता रहे नात्मा से जंतोर निहितो गुहाया। महियान आत्मा अस्य, वही जो सर्वव्यापक परमात्मा, आत्मा शब्द के द्वारा कहा जाता है। जंतोर मने जीवस्य निहितो गुहाया, जीव की हृदय रूपी गुफा में वो परमात्मा निवास करते हैं। है वही तत्व, अनेकों नामों से कहा जाता है, उसी को बृहत व्यापक गतिमान विस्तृत होने के कारण ब्रह्म कहा जाता है। उसी तत्व को हमारे जीवन का लक्ष्य होने के नाते त्वमपद लक्ष्य कहा जाता है, अथवा त्वम पद का लक्षार्थ होने से त्वम पद लक्ष्य कहा जाता है। तत्व एक है और जब भी अनुभूति होती है आत्मा की तो अपने अंदर, इसलिए उसको प्रत्यक बोला है। जब भी आप आत्मा की बात करते हैं तो आपको बाहर दिखाई देता है कि अंदर दिखाई देता है? तत्व एक ही है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, अनेक अनेक नामों से। और यहां पर आत्मा शब्द से कहा, आत्मा अस्य, जो अणु से भी अणु, महान से महान, जो आत्म तत्व है। आत्मा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अति इति आत्मा। अति का अर्थ होता है खाता है, जिसकी व्युत्पत्ति है संस्कृत में अति, अदभक्षणे धातु है, उसका अर्थ होता है जो खा जाता है उसको बोलते हैं आत्मा। तो आत्मा खाता क्या है? आत्म तत्व जब जग जाता है तो हमारे अज्ञान का भक्षण करता है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक वो सुप्त है, जैसे माचिस में अग्नि है, उन तिलियों में अग्नि है, लेकिन वो अग्नि उस तिली को जलाती नहीं है। लेकिन जब आप रगड़ के अग्नि पैदा कर देते हैं, जो है उसी अग्नि को पैदा कर देते हैं, तो पैदा करने के बाद वो अग्नि उस माचिस के तिली को और उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को जला के नष्ट कर देती है। वैसे हम आत्मा हैं, सबको पता है। यदि आपको पूछे वेदांत का श्रवण किए हुए हैं आप, तो आपको पूछे आप कौन हैं, तो आप बता देंगे कि हम ब्रह्म हैं। हाँ, लेकिन आप ब्रह्म, कौन से ब्रह्म हैं? वो माचिस की तिल्ली वाले की जलते हुए? दोनों भी अग्नि हैं, माचिस के तिल्ली में भी अग्नि है, और रगड़ने के बाद अग्नि पैदा हो जाती है, वो भी अग्नि है। तो आप जलती हुई अग्नि है कि सुप्त अग्नि है? तो ये जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि हैं, ये उस अग्नि को प्रकट करने के लिए। हम सभी परमात्मा की बीज हैं, ऐसा समझ लीजिए। हम सभी परमात्मा के बीज हैं, बीज हैं, सही है। और उस बीज के अंदर वृक्ष हैं, सब कुछ है, लेकिन करना क्या है? उसको प्रकट करना है। बीज के अंदर जो तत्व है उसको प्रकट करना है, बीज के अंदर जो वृक्ष है उसको प्रकट करने के लिए आप जमीन के अंदर उस बीज को डालते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो प्रकट हो जाता है। उस पेड़, उस बीज के अंदर नीले फूल हो तो आप उसको पीले नहीं कर सकते, वो नीले रूप में प्रकट होगा। और वो बीज आपका पीपल का है तो पीपल पैदा होगा, और वो वटवृक्ष का बीज है तो वटवृक्ष पैदा हो। तो हम लोग जो है ना, वो बीज हैं। बीज किसके बीज हैं? ईश्वर के, परमात्मा के, आत्मा के। और उसकी जब साधना करेंगे तो वही प्रकट होगा जो आप हैं। श्रुति कहती है आप आत्मा हैं। अब केवल वहां साधना के द्वारा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जप, ध्यान, वैराग्य, समाधि, संपत्ति के द्वारा उसको प्रकट करना है, उसको जानने में हमें समर्थ होना है। और इसीलिए बोला निहितो गुहायाम, जंतो हो निहितो गुहायाम। वही जीवात्मा है। हम लोग बोलते हैं हम जीव हैं, भाई तत्व तो वही है, जीव ही तत्व है। वो आत्मा और जीव अलग नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है कुछ अलग, अलग समझ रहा है, लेकिन है वही। जिसको आप जीव बोलते हैं वो भी वही है, लेकिन वही होते हुए भी वो अपने को अलग समझ रहा है। अपने को अलग समझना है, अलग समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपका परिचय क्या है, आपको पहले बताया गया था, आपका परिचय है अजर अमर नित्य कूटस्थ चिदैकरस। और यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, जंतु जंतोर निहितो गुहाया। जंतु का अर्थ होता है जायते इति जंतु, जो पैदा हुए मरे, इसलिए जंतु बोलते हैं ना, जंतु नाशक दवा। आप डॉक्टर के पास जाके बोलिए जंतु नाशक दवा, तो कौन सी दवा देगा वो? वो जंतुनाशक दवा देगा, वो आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म कीटाणु, जंतु शब्द का अर्थ वो जो सूक्ष्म कीटाणु आपको दिखाई नहीं देता है, वो मच्छर मारने की दवा नहीं देगा वो। आप डॉक्टर को बोलो कि जंतुनाशक, तो जब वो जंतुनाशक दवा मांगेंगे तो मच्छर मक्खी की दवा देगा कि आपके पेट के कीड़े मारने की देगा? वो जंतु मतलब बहुत छोटा, जो दिखाई न दे ऐसा क्षुद्र जो जीव है ना, उसको जंतु शब्द से कहा जाता है। और यहां पर श्रुति जीव के लिए जंतु बोलते हो, क्यों? वो बात सही है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और जो समझते हैं वैसी क्रियाएं, वैसा आचरण, वैसा स्वभाव हमारा बनता जाता है। इसलिए हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने आप को समझते क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने आप को आंख समझते हैं तो हम देखने वाले हो जाते हैं और रूप के प्रति पागल बन जाते हैं। हम अपने आप को कान समझते हैं इसलिए सुनने के प्रति हम पागल हो जाते हैं। हम अपने आप को पैर समझते हैं इसलिए चलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और हम अपने आप को मुख समझते हैं, रसना समझते हैं, इसलिए खाने के प्रति पागल। पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम इनमें से किसी भी चीज को समझने लगते हैं कि ये मैं हूं, तो उसके बाद फिर उसके विषयों की आसक्ति और उसको पाने की वासना, प्रयत्न, सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। और यदि हम वहां से अपने आप को अलग कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि हम दृष्टा, साक्षी, आत्मतत्व है, अखंड चिदैकरस, तो उसके बाद फिर ये विषयों की जो वासना है अपने आप शिथिल होने लगती है। क्योंकि हम आंख है ही नहीं, हम कान है ही नहीं, हम बाकी अन्य इंद्रियां है ही नहीं, हम तो उसके दृष्टा है, अलग है, चेतना है। आप समझने लगते हैं ना तो वो जीवत्व से ऊपर उठने लगते हैं, और नहीं समझते हैं तो फिर जीव भाव में आ जाते हैं। इसलिए जंतु भी हम ही हैं, जीव भी हम ही हैं, और शिव भी हम ही हैं। केवल अंतर समझ का है, बस अंतर केवल समझ का है, अंतर केवल ज्ञान का है। जो संबुद्ध व्यक्ति है वो अपने आप को जीव नहीं समझता है, वो चेतना, वो आत्मा, शिव समझ लेता है। उसको हमें समझना है ना, तो समझने के लिए बहुत जरूरी है, यहां जीव शब्द जो है, जंतु जीव का वाचक है, निहितो गुहायाम, ये कहकर कि कोई बहुत गहरी बात कहना चाह रहे हैं। आप उस तत्व को जानना चाहते तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक चीज जीवु प्राण धारणे, धातु से जीव शब्द बनता है। आप उस तत्व को जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए कुछ उपकरण भी चाहिए, जानने के लिए कोई साधन भी तो चाहिए। बिना साधन आप उसको जानेंगे कैसे, बिना उपकरण आप कोई काम करेंगे कैसे? उस तत्व की जब भी आपको अनुभूति होगी ना, तो आपको हृदय में होगी। इसलिए आप एक बात अक्सर श्रवण करते होंगे, उस आत्म तत्व के बारे में ये कहा है, परमे व्योमन, गुहायाम परमे व्योमन, गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम इति गुह्यतमम। भगवान ने गीता जी में बोला वो गुहाहित है, आपको जानना है पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा। आपको उस तत्व को जानना है तो आपको गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा इसका आप अर्थ कर लीजिए, आप बहुत गहरे अर्थों में जाने की जरूरत नहीं। पहला अर्थ यही है कि आपको यदि उस तत्व को पाना है जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, वो सबके भीतर है, बाहर है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर वो तत्व है, लेकिन उसको पाना है तो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। श्रुति ने कहा वो गुहा के अंदर है। अब वो गुहा के अंदर तो आप गुफा खोजो। आप संस्कृत में गुहा बोलते हैं, उसको हिंदी में गुफा बोलते हैं। अब आपको उस तत्व को जानना है तो आप गुफा खोजनी पड़ेगी। इसलिए प्राचीन समय के ऋषि महर्षि लोग वो गुफाओं में चले जाते थे, गिरी कंदराओं में चले जाते, वहां बैठ करके ध्यान किया करते थे। बात सत्य है, पुराने जमाने के लोगों को आप देखना, वैराग्य होते ही वो निकल पड़ते थे। यद अहरेव व्रजे तद यद अहरेव विरजे तद अहरेव प्रव्रजे। जिस समय आपको वैराग्य हो, परमात्मा को पाने की इच्छा पैदा हो जाए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी समय छोड़ के चल पड़े और कोई गुफा खोजे, कोई गंगा का किनारा खोजे, गिरी कंदराए तीर्थ, और वहां बैठकर साधना करे, तब उस तत्व को जान सकते हैं। तपसा एव ब्रह्म विजानिया, उसका दूसरा अर्थ है। यहां गुहा शब्द का अर्थ एकांत, गुहा शब्द का अर्थ एकांत के अर्थ में। अब आप गुफा के अंदर जाएंगे तो गुफा में आपको मिलेगा क्या, और यहां गुहाहित शब्द का अर्थ ये भी है, गुहा अदृश्य अज्ञेय होती हैं। आप बड़ी से गुफा में आप प्रवेश करेंगे, अंधेरा है उसके अंदर, मालूम नहीं उसके अंदर क्या है, वो अज्ञेय है, और उसके अंदर निस्तब्धता, वहां शब्द नहीं है। वहां आप अंदर जाएंगे तो आपको न रूप के दर्शन होंगे, न शब्द के, न स्पर्श के, न रस के, माने अतिंद्रिय अवस्था में प्रवेश करने के लिए, विषयों से अपने मन को दूर करने के लिए गुफा आपको मदद करती है। आपको गुफा मदद करती है, गुफा में जाना व्यर्थ नहीं है, वो साधना में मदद करती है। इसलिए एकांत बहुत जरूरी है। आप यही एकांत आपको यदि घर में मिल जाए, संभावना है, संभावना नहीं भी है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस एकांत को कैसे पैदा कर सकते हैं। हम जैसे अपने ऑफिस को डेवलप करते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्थित, क्योंकि वो हमारी डिमांड है, चाह है, हम बहुत सुंदर व्यवस्थित उसको बना लेते हैं, तो वैसे ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन में जाने के लिए ये हमारे ऊपर निर्भर है कि उसको किस प्रकार एकांत को हम निर्मित करते हैं। यह गुहा शब्द का अर्थ एकांत, और कई जगह पर आया हृदय ही गुफा है। ये भगवान ने भी बोलना वो तत्व कहां है, तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, ये हृदय है, ये हृदय ही गुफा है। हमको जब भी परमात्मा के दर्शन होंगे, आत्मानुभूति होगी, तो बाहर होगी कि भीतर होगी, तो इसीलिए कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। श्रीमद् भागवत में एक बहुत मजेदार उदाहरण आया है, जब हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं भाई का बदला लूंगा, जिसने मेरे भाई को मारा है उसको मैं मारूंगा, शस्त्र लेके चल पड़ा, भगवान को ढूंढने लगा, भगवान घबरा गए। ऐसे वो पहुंच गया वैकुंठ लोक और भगवान ने देखा कि ये तो आ गया, यहां भी आ गया मारने के लिए और बहुत आक्रोशित हैं, भाई का बदला लेने के लिए आए और अब बचना चाहिए। भगवान ने सोचा आप बचना चाहिए। भगवान भागे और जहां भी भगवान जाते वहां पहुंच जाता है हिरण्यकश्यप ढूंढता हुआ। भगवान भागते, भगवान सोचने लगे कि अब ऐसी कौन सी जगह है कि जहां जाके मैं छिप जाऊं और वहां हिरण्यकश्यप न पहुंच पाए। भगवान ने सारी दुनिया ढूंढी सोची लेकिन भगवान आश्वस्त नहीं हुए। भगवान ने सोचा कि मैं जहां भी जाऊं ये ढूंढ निकालेगा। बहुत गहरी शत्रुता उसके अंदर और खोजी है, ये खोज निकालेगा मेरे। तो भगवान ने सोचा ऐसी कोई जगह कि जहां न वो पहुंच पाए न खोज पाए, भगवान को मालूम पड़ी जगह। वो प्रसन्न हुए भगवान। भगवान समझ गए कि सारी दुनिया में ये मेरे को खोजेगा लेकिन अपने हृदय में नहीं खोजेगा। और भगवान जाके उसी के हृदय में छिप गए। कहानी बड़ी मजेदार है। आप कहानी पर मत जाना, आप उसके रहस्यों पर जाना। हिरण्यकश्यप ने भगवान को दुनिया में हर जगह पर खोजा लेकिन उन्होंने कहा नहीं खोजा, हृदय में नहीं खोजा। तो भगवान मिलेगी नहीं उसको। हम भी भगवान को हर जगह पर खोजते हैं लेकिन कहा नहीं खोजते, अपने में नहीं खोजते। भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं तुम्हारी हृदय में हूं और हृदय में भगवान है। किस रूप में है? कभी आपने ध्यान दिया होगा क्या भगवान को ये कहना है क्या कि मैं आंख में नहीं हूं, कान में नहीं हूं, मैं हाथ पैर में नहीं हूं, तुम्हारे केवल हृदय में हूं? ऐसा नहीं कहना है। आप जब भी अपने आप को अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में है, तो हृदय में किस रूप में है? वो अहम रूप में है। जो हम अहम अहम बोलते हैं ना कृष बाबू, वही तो है। वो सबके भीतर सबके हृदय में जो अहम रूप से जो आपको प्रतीयमान तत्व है वही तो वही है, वही भगवान है, वही आत्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व अहम रूप से। और जब प्रतीति भी होती है ना तो इसी रूप में आप जब मैं बोलते तो कैसे बोलते हैं आप? मैं ऐसा बोलते हैं? नहीं। आप जब भी बोलते तो छाती ठोक के बोलते मैं का जो केंद्र है, मैं के अनुभूति का जो केंद्र है ये हृदय तत्व। इसलिए मैं कहां निवास करता है? हृदय में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो वेद, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज, ज्योति स्वरूप। इसलिए ज्योति स्वरूप बोला है उसको योगी ने, उसको ज्योति स्वरूप बोला। आत्म तत्व हमारे हृदय में, वही परमात्म तत्व है, इसी हृदय में विराजता है। और इसीलिए उसको बोला गुहाहितम। और गुहाहितम कहने का अर्थ ये भी है जब भी आप खोजेंगे आपको अनुभूति होगी इसी रूप में, आत्म रूप में अनुभूति होगी। और उसके बाद फिर आपकी अनुभूति होगी बाहर। आत्मे वेदम सर्वम, सर्वम खलवेदम ब्रह्म। इसलिए खोज की जो प्रथम इकाई है, जो खोज का प्रथम स्थान है वो हृदय। शुरुआत करना अपने से, इसलिए कहा गुहाहितम। जंतुर निहितो गुहाया, और इसका बुद्धि शब्द भी अर्थ किया है। गुहा शब्द का अर्थ बुद्धि रूपी गुफा में। तो बुद्धि रूपी गुफा में इसलिए बोला गया है क्योंकि आत्म तत्व आपको जानना है तो कहां जानेंगे आप? तो बुद्धि से जानेंगे। उसको जानना है, उसको पैदा नहीं करना है, अपने आप को केवल समझना है। तो ये जो समझ है ना, समझ में ही वही है, समझ में ही है वो। ये बुद्धि में है का मतलब है कि समझ में है वो। यदि समझ है तो है, और समझ नहीं है तो नहीं है। कितनी भी मूल्यवान चीज हो और उसकी समझ ना हो तो परम पूज्य महाराज श्री ने एक दृष्टांत दिया। किसी गडरिया को एक पत्थर मिला, बहुत चमकीला पत्थर। वो गडरिया बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उस पत्थर को उन्होंने बकरी के गले में बांधा। वर्षों तक उस बकरी के गले में वो पत्थर चमकीला बंधा रहा, लेकिन किसी जवाहरी के आंखों के सामने वो पत्थर आया। उसने देखा ये तो हीरा है। अब वो समझ है कि नहीं, आप गडरिया को बोलो कि तुम्हारे बकरी के गले में क्या है, वो बोलेगा पत्थर बांधा है हमने, क्योंकि उसकी पहचान नहीं है ना। आप गडरिया को पूछो हो कि क्या है ये, उसके लिए क्या है, पत्थर, और वो जवाहरी, उसके लिए वो हीरा है, करोड़ों रुपए का हीरा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे शास्त्र ने ज्ञान को बहुत मूल्य दिया है, ज्ञान को बहुत मूल्य दिया है। हम तत्व होते हुए भी अज्ञान में जी रहे हैं, अज्ञान में हैं, तो नारायण उसका कोई मूल्य नहीं, हम वो होते हुए भी कोई मूल्य नहीं है। आज यदि हम समझ लेते हैं तो उसके होने का अर्थ है, उसके होने का प्रयोजन है। इसलिए कहा तमक क्रतुहु, केवल हृदय रूपी गुफा में या बाहर की गुफा में जाने से वो तत्व नहीं मिलेगा। तमक क्रतुहु पश्यति धातु प्रसाद, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। अक्रतुहु, क्रतु शब्द का अर्थ है कर्मकांडी, क्रतु शब्द का अर्थ है सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति, कामना युक्त अंतकरण वाला। लेकिन कामना युक्त अंतकरण वाला व्यक्ति इस तत्व को नहीं जान सकता है। ये हमारे अंदर जो कामना है, फल की चाह, ये फल की चाह हमें जगाती है भीतर से, अनात्म पदार्थों से जोड़ने की प्रेरणा देती है। ये कामना हमें बहिर्भूत बना लेती है, हमारे भीतर से इंद्रिय भाव जगा देती है, इंद्रियों के होने का भाव जगा देती है। ये कामना कोई सामान्य चीज नहीं है, ये हमारे भीतर भाव जगाती है, होने का भाव जगाती है। जैसे रूप की आसक्ति पैदा हो जाती है तो आंख होने का भाव जग जाता है, शब्द की वासना जब जग जाती है तो कान होने का भाव पैदा हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपको सुनना है तो उस समय आप कान ठीक करने लगते हैं, देखना है तो आंख ठीक करने लगते हैं। यदि देखने की इच्छा ना हो तो हमें चश्मे की याद नहीं आती, कभी नहीं। जितनी देखने की इच्छा होगी उतना हम चश्मा संभालेंगे, जितना सुनने की इच्छा होगी उतना हम कान संभालेंगे, और चलने की इच्छा होगी तो पैर संभालेंगे। वो इच्छा है, उस इंद्रियों को जगा देती है, उसके प्रति सजग कर लेती है। और ये जो सजगता, ये जो जानने में आना है, यही तो बीमारी है। मैं डॉक्टर को पूछता हूं, डॉक्टर अस्वस्थता की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य किसको बोलते हैं? स्वास्थ्य का इतना ही अर्थ है वो चीज हो लेकिन मालूम न पड़े, वो चीज आपके पास है लेकिन वो चीज आपको मालूम न पड़े। समझ लीजिए कि बिल्कुल वो ठीक है, और वो चीज बार बार आपको मालूम पड़ रही है, इसका मतलब कि वो चीज बीमार है। आपके पास दो आंखें हैं? हाँ हाँ है। मालूम पड़ रही है? नहीं मालूम पड़, वो स्वस्थ है। और आपका हाथ बार बार आंख के तरफ जा रहा है, आपका ध्यान आपके आंख के तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब आंख आपकी बीमार है। दो आंखें कई बार एक आंख बार बार आपको याद दिला रहे हैं, हाथ जा रहा है, समझ लो कि वो आंख आपकी बीमार है। ये मालूम होना ही बीमारी है। आपके पास 32 दांत हैं, एक भी दांत मालूम पड़ रहा है?